संस्कृत का अन्य भाषाओं से संबंध। भारतवर्ष की अधिकतर भाषाओं की जननी संस्कृत है। हिंदी, मराठी, पंजाबी, गुजराती, बंगला, असमी, उड़िया आदि भाषाएं तो संस्कृत से निकली हैं। तमिल भी संस्कृत से अत्यधिक प्रभावित भाषा है। इस प्रकार आर्य एवं द्रविड़ परिवार की सभी भाषाएं संस्कृत से प्रभावित हैं। इस संदर्भ में संस्कृत आयोग लिखता है, आधुनिक आर्य भाषाएं संस्कृत से ही उत्पन्न हुई हैं, और जहां तक द्रविड़ भाषा का संबंध है, वे भी अपने साहित्यिक प्रयोग के आदिकाल से ही संस्कृत के द्वारा पालित पोषित हैं। राम रावण युद्ध की कथाएं, भगवान कृष्ण के जीवन चरित्र, उषा अनिरुद्ध की प्रणय कथाएं मूल रूप से संस्कृत में लिखी गईं, किंतु यही कथाएं भारत की सभी भाषाओं में लिखी गईं। इन संस्कृत कथाओं ने भारत की समस्त भाषाओं के साहित्य की श्रीवृद्धि की है। कंब रामायण तमिल भाषा का अनूठा ग्रंथ है। अर्जुन चित्रांगदा प्रेम कथा, कृष्ण गोपी प्रेम संबंधी आख्यान बंगला साहित्य के अमूल्य रत्न हैं। असमी, उड़िया, गुजराती सभी भाषाओं में यही कथाएं प्रकारांतर से मिलती हैं। यदि इन्हें निकाल दिया जाए तो किसी भी भाषा में साहित्य में कुछ भी नहीं रह जाता। भाषा की दृष्टि से भी भारतवर्ष की सभी भाषाओं में संस्कृत के अधिकांश शब्द तत्सम या तद्भव रूप में विद्यमान हैं। हिंदी भाषा तो संस्कृत भाषा की ही शब्दावली मूल रूप से ग्रहण करती है। जब हिंदी को संविधान में राजभाषा स्वीकृत किया गया तो वहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया कि आवश्यकता अनुसार हिंदी भाषा की शब्दावली संस्कृत से ही ली जाएगी। संविधान में यह बात स्पष्ट रूप से लिखी गई। संस्कृत भाषा में इतनी सामर्थ्य है कि वह आधुनिकतम ज्ञान विज्ञान के योग्य शब्द प्रदान कर दे। शब्दों की रचना ही दृष्टि से संस्कृत अक्षय भंडार है। भारतीय भाषाएं ही नहीं, संस्कृत की अन्य भाषाओं पर भी संस्कृत का प्रभाव है। शिव की प्राचीनतम भाषा होने के कारण प्राचीन काल में भारत जैसे वैभवशाली एवं प्रगतिशील राष्ट्र की भाषा होने के कारण इसने उस समय की अन्य भाषाओं को प्रभावित किया। लैटिन और ग्रीक पर संस्कृत भाषा के प्रभाव के विषय में विद्वानों ने एक मत होकर अपनी सस्मति दे दी है, अतः उसके विषय में अधिक कहना उचित नहीं। संस्कृत का पितृ शब्द ही पश्चिम में पेटर और फादर हो गया। भ्रातृ शब्द ब्रदर के रूप में दिखाई पड़ता है। अंग्रेजी के नोज, टूथ, स्टेशन, माइंड, कप, हैंड शब्दों का संबंध संस्कृत के नस, दंत, स्था, मन, कुप्य, हन शब्दों से कहीं ना कहीं अवश्य है। संस्कृत के अनेक शब्दों से ही लैटिन एवं ग्रीक के अनेक मूल शब्द बने हैं। संस्कृत के मत, दिव्य, गो, जनन शब्दों को अंग्रेजी के मैड, डिवाइन, काउ, जेनेसिस शब्दों के साथ रखकर पढ़ी है। यही नहीं, रूसी भाषा के भी अनेक शब्द संस्कृत शब्दों के समान हैं। रूसी भाषा के अगोन, द्वेर, नेवा, एस्ट, कुदा, तुदा, जिनानिये, निवेस्ता, प्लावानीय शब्दों को संस्कृत भाषा के अग्नि, द्वार, नभ, अस्ति, कुत्र, तत्र, ज्ञान, नवोड़ा, प्लावन शब्दों के साथ रखकर पढ़िए। समानता स्पष्ट परिलक्षित होती है। संस्कृत भाषा के पौष, माघ, फागुन, चीनी भाषा के पहुआ, माकुआ तथा फाल्कुना के रूप में व्यवहृत हैं। प्राचीन काल में चीनी लोगों का विश्वास था कि यह पृथ्वी कच्छप के ऊपर टिकी हुई है। स्वस्तिक चिन्ह को चीन में गौतम बुद्ध के हृदय के रूप में स्वीकार किया जाता था। महाभारत और मनुस्मृति में भी चीन देश का उल्लेख मिलता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में चीनी रेशम के विविध प्रकारों का वर्णन है। चीन में भी भारत की भांति होली का उत्सव मनाया जाता था। चीनी भाषा में प्राप्त बौद्ध साहित्य में राम वनवास, सीताहरण, जटायु कथा, सुग्रीव मैत्री आदि का उल्लेख मिलता है। चीन और भारत के मार्ग में स्थित खोतान में संस्कृत भाषा का विशाल विश्वविद्यालय था। ह्वेनसांग ने यह शर्त रखी थी कि जो भी चीनी विद्वान भारत की यात्रा पर जाए वह खोतान में कम से कम 6 माह रहकर संस्कृत का अध्ययन अवश्य कर ले। चीन में गणेश पूजा भी प्रचलित थी। मंगोल की एक समय में राजधानी अनबलोतर थी, जहाँ पर गरुण को ग्राम देवता के रूप में पूजा जाता था। मंगोल भाषा में दिनों के नाम इस प्रकार हैं: आदिया आदित्यवार, सोमिया सोमवार, बुधिया बुधवार, शुकर शुक्रवार, संचीव शनिवार। इन नामों में संस्कृत का प्रभाव स्पष्ट है। भारत से बाहर अनेक नगरों एवं देशों के नाम संस्कृत भाषा से प्रभावित हैं। ईरान और आयरलैंड के मूल में आर्य शब्द है। काठमांडू काष्ठ मंडप का, पेशावर पुरुषपुर का, कंधार गांधार का, सिंगापुर सिंगपुर का, सुमात्रा स्वर्णद्वीप का, जावा यवद्वीप का, साइबेरिया शिविर देश का, लाओस लाव देश का तद्भव रूप है। एशिया के दक्षिण पूर्व में संस्कृत भाषा का आज भी प्रभाव बना हुआ है। इंडोनेशिया में सामान्य जन यद्यपि मुसलमान हैं, फिर भी रामायण एवं महाभारत की कथाओं से वे प्रेरणा लेते हैं एवं इनमें वर्णित पात्रों को अपना देव समझते हैं। रामायण एवं महाभारत की कथाएं इंडोनेशिया में राष्ट्रीय कक्षाओं के रूप में स्वीकृत हैं। इंडोनेशिया शब्द का अर्थ ही भारत द्वीप इंडस प्लस नेसस है। वहाँ के भूतपूर्व राष्ट्रपति सुकर्ण का नाम कर्ण के आधार पर था। इंडोनेशिया के द्वीपों के नाम भी संस्कृत में हैं। सुमात्रा नाम तो शुद्ध संस्कृत शब्द ही है। वहाँ एक स्थान है जोग जगर्ता, जो योग्यकर्ता का तद्भव रूप है। जोग जकर्ता सुल्तान की उपाधि है, भुवनो सेनापति। यह शब्द शुद्ध संस्कृत शब्द है। वहाँ का एक प्रसिद्ध बंदरगाह है प्रोबोलिंगो, जो पूर्व और कलिंग शब्दों से बना है। जावा के मुसलमान भी मूर्तियों पर फूल चढ़ाते हैं और मंदिरों में आरती भी उतारते हैं। बाली द्वीप का नाम भी संभवतः बाली के आधार पर बना है। बाली में आज भी हिंदुओं का बहुमत है और वे शिव की उपासना करते हैं। वे पुजारी को पादंड कहते हैं और पादंड संस्कृत भाषा का विधिवत अध्ययन करते हैं। उनके मंत्र प्रार्थनाएं संस्कृत भाषा में ही हैं। बाली की भाषा में संस्कृत के अनेक शब्द मिलते हैं। जावा और बाली में छाया नाटकों का बड़ा प्रचलन है और इनमें राम रावण युद्ध, अर्जुन परिचय, द्रौपदी विवाह आदि दृश्य दिखाए जाते हैं। जावा में सर्वोच्च पर्वत शिखर का नाम सुमेरु है। कंबोडिया शब्द कंबोज का तद्भव रूप है। यहाँ पर भी संस्कृत भाषा व साहित्य का प्रभाव है। कंबोडिया में अधिकांश लोग बौद्ध हैं और वहाँ पर पौराणिक कथाएं उनकी भाषाओं के साहित्य का गौरव बढ़ाती हैं। इन स्थानों के नाम भी संस्कृत शब्दों के तद्भव रूप हैं। लाओस की जनता भी संस्कृत भाषा के प्रभाव से बची नहीं है। फारसी भाषा और संस्कृत भाषा के घनिष्ठ संबंधों को विद्वानों द्वारा स्थापित किया जा चुका है। पश्तो भाषा पर भी संस्कृत का अत्यधिक प्रभाव है। पश्तो अफगानिस्तान की भाषा है। वहाँ की जनता एवं सरकार ने पश्तो और संस्कृत के संबंध का अनुभव करके संस्कृत के अध्ययन पर विशेष बल दिया है। काबुल विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में संस्कृत महत्वपूर्ण विषय है। संस्कृत के अध्ययन पर बल देने का वहाँ प्रयोजन यह है कि संस्कृत के व्याकरण के आधार पर पश्तो को वैज्ञानिक भाषा बनाया जाए। यूरोप द्वारा सामान्यता भाषा। भारत एवं दक्षिण पूर्व एशिया में ही नहीं वरन यूरोप में भी संस्कृत का आदर हुआ। भारत में अंग्रेजों ने पहले व्यापार करना प्रारंभ किया, पर बाद में धीरे धीरे अपने शासन स्थापित कर लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन काल में ही अंग्रेज संस्कृत के विशाल साहित्य के संपर्क में आ गए और तब उन्हें मालूम हो गया कि हिंदू जाति सभ्यता व संस्कृति में किसी से पीछे नहीं। उन्हें पता लगा कि संस्कृत में 5000 वर्षों का साहित्य भरा हुआ है, जिसके सामने ग्रीक एवं लैटिन साहित्य ठहर नहीं सकते। अंग्रेजों ने काशी के पंडितों की देखरेख में हिंदू धर्म शास्त्रों का अनुवाद कराया और उन अनुवादित ग्रंथों को पढ़कर वे आश्चर्यचकित रह गए। वारन हेस्टिंग्स ने चार्ल्स विल्किंस को काशी भेजा, जहां उसने पंडितों से संस्कृत सीखकर अपने को धन्य समझा। सन 1885 में चार्ल्स विल्किंस ने गीता और हितोपदेश का अंग्रेजी में अनुवाद किया, जिससे अंग्रेजों को भी संस्कृत का अमृत पान करने का सौभाग्य मिला। इसी समय सन 1783 में विलियम जोन्स नामक अंग्रेज बंगाल का जज नियुक्त किया गया। जोन्स ने संस्कृत की प्रशंसा यूरोप में ही सुन रखी थी। यहाँ आकर उसने इस गीर्वाण वाणी का अध्ययन किया और इसके प्रसार के लिए कलकत्ता में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नामक एक संस्था की स्थापना की। इस सभा के वार्षिक अधिवेशनों में शास्त्रों की विस्तृत चर्चाएं होती थीं और इनका विवरण फ्रेंच भाषा में छपता था, जिसे बड़ी लगन के साथ यूरोप में पढ़ा जाता था। सन 1789 में जोन्स ने महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया, जिससे समूचा यूरोप संस्कृत के समक्ष नतमस्तक हो गया और यूरोपीय विद्वानों के ज्ञान की सीमाएं विस्तृत हुईं। दो वर्षों के बाद सन 1791 में इस नाटक का जर्मन भाषा में अनुवाद हुआ, जिसे पढ़कर जर्मनी का राष्ट्रकवि कवि गेटे नाच उठा और भारत दर्शन के लिए ललायत हो उठा। जिस प्रकार भारत में कविवर रवींद्रनाथ टैगोर सम्मानित थे, उसी प्रकार तत्कालीन जर्मनी में गेटे सम्मानित थे। गेटे ने अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के प्रति आभार व्यक्त करते हुए एक प्रशस्ति लिखी, जिसमें उसने इस नाटक को स्वर्ग और पृथ्वी का सोपान बताया। गेटे ने लिखा, हे मित्र, यदि तुम बासंती युवावस्था के मनोरम पुष्प और ग्रीष्म तुल्य प्रौढ़ावस्था के उत्तमोत्तम फल और अन्य ऐसी आत्मा को प्रभावित करने वाली श्रेष्ठ सामग्रियां एक ही स्थल पर ढूंढना चाहते हो तो कालिदास की शाकुंतला पढ़ो। उसमें पहुंचकर ना केवल तुम्हारी आत्मा ही संतुष्ट और शांत होगी प्रत्युत तुम्हें स्वर्ग और मृत्यु लोक की सकल समृद्धियां भी वहां एक ही जगह पर मिल जावेंगी। आध्यात्मिक ज्ञान के स्रोत। उपनिषदों से प्रसिद्ध दार्शनिक सोपेनहार इतने अधिक प्रभावित हुए कि उन्होंने यह कह दिया, समग्र विश्व के उपनिषदों के अध्ययन की तुलना में कोई भी अध्ययन अधिक उपादेय और उदात्तकारी नहीं है। यह मेरे जीवन का संबल रहा है या मेरी मृत्यु का संबल होगा। सन 1814 में पेरिस विश्वविद्यालय में संस्कृत पढ़ाने की सरकारी व्यवस्था हुई, जिसमें शेजी नामक विद्वान की संस्कृत शिक्षक नियुक्त किया गया। यहीं पर मैक्स मूलर ने भी संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की थी। 6 दिसंबर 1823 को जर्मनी के एक छोटे से नगर देसाऊ में जन्मे मैक्स मूलर के हृदय में भारत के प्रति अथाह प्रेम था। उनके पिता विलहेम मूलर एक प्रसिद्ध कवि थे। मैक्स मूलर ने लिपजिग विश्वविद्यालय के हरमन ब्रो रबोस की अध्यक्षता में संस्कृत का अध्ययन किया था और 1843 ईस्वी में दर्शन शास्त्र में डॉक्टरेट उपाधि ली थी। स्वामी विवेकानंद अपनी विदेश यात्रा के मध्य मैक्स मूलर के घर गए थे और अपनी इस यात्रा को उन्होंने तीर्थ यात्रा कहा था। विवेकानंद ने कहा था, धन्य है वे, उनके मन में भारत के लिए कितना अगाध प्रेम है। मैक्स मूलर ने रामकृष्ण परमहंस की एक पुस्तक पर एक पुस्तक लिखी। पेरिस के योजेन बोर्नोफ की प्रेरणा से ऋग्वेद प्रकाशित करने के लिए वे इंग्लैंड गए और वहीं बस गए। आजीविका के लिए उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में सन 1850 से सन 1875 ईस्वी तक यूरोपीय भाषाओं का शिक्षण किया। अवकाश प्राप्त करने के पश्चात उन्होंने पूर्व की पवित्र पुस्तकों के प्रकाशन की विशाल योजना प्रारंभ की। समस्त संस्कृत संसार मैक्स मूलर के किए गए कार्यों के प्रति ऋणी है। उपर्युक्त विद्वानों के अतिरिक्त हेनरी टॉमस कोलब्रुक बूलर कीथ विंटरनिट्स मैकडोनल सिलर स्लेगल मोनियर विलियम्स प्रभृति अनेक पाश्चात्य विद्वानों ने संस्कृत का अध्ययन और अनुशीलन किया। इटली डेनमार्क स्वीडन जर्मनी फ्रांस इंग्लैंड आदि यूरोपीय देशों में 19वीं शताब्दी के आरंभ में ही संस्कृत की धाक जम गई थी और यूरोपीय विद्वान संस्कृत की खोज को कोलंबस द्वारा की गई दुनिया की खोज के समान ही महत्वपूर्ण मानने लगे थे। उस समय यूरोप में यह कहावत प्रचलित हो गई थी कि वहाँ के विद्वान ब्राह्मण होते जा रहे हैं। भारत पराधीन था पर विद्वानों का तीर्थ स्थान बन गया था और यहाँ से जो विदेशी विद्वान लौट कर जाता था उसका यूरोप में बड़ा सम्मान होता था। विदेशों में संस्कृत भाषा साहित्य का अध्ययन। आजकल भी रूस अमेरिका इंडोनेशिया जर्मनी आदि देशों में संस्कृत साहित्य का पठन पाठन रुचिपूर्वक किया जा रहा है। इस संबंध में अध्ययन अनुसंधान शोध पत्रिका में प्रकाशित विवरण ध्यान देने योग्य हैं। प्राच्य विद्या संस्थान मास्को के विद्वान डॉक्टर आइगोर सेरेब्राइकोन सोमदेवन के कथा सरित सागर और भृतरहरि के शतकों में जीवन के विविध पक्षों के वर्णन से बहुत प्रभावित है। इन्होंने दोनों ग्रंथों का रूसी भाषा में अनुवाद करके संस्कृत की सेवा की है। पश्चिमी जर्मनी के विद्वान डॉक्टर गुंथर डी सोंदीमेर हाइडलबर्ग विश्वविद्यालय में धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र के अध्यापक हैं। आपने संस्कृत साहित्य के आधार पर अविभक्त कुटुंब नाम के ग्रंथ की रचना की है, जिसमें भारतीय कुटुंब की परंपरा के विकास का एक वैध संस्था के रूप में विवेचन किया गया है। प्रोफेसर एलेक्स वेमेन गत अनेक वर्षों से कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क में संस्कृत का अध्ययन कर रहे हैं। आप बौद्ध धर्म और तंत्र में विशेष रुचि रखते हैं। गुय समाजतंत्र नाम से अंग्रेजी में आपने एक पुस्तक लिखी है। आपने एक तिब्बती भाषा की पुस्तक का अंग्रेजी में फंडामेंटल्स ऑफ बुद्धिस्ट तंत्राज नाम से अनुवाद किया है। इंडोनेशियन विद्वान डॉक्टर पुण्यात्मज हिंदू धर्म के विवेचक विद्वान हैं। आपने हिंदू धर्म शीलक्रम आदि ग्रंथों की रचना की है। मंगोलिया के विद्वान प्रोफेसर रिंचेन कालिदास की काव्य प्रतिभा के प्रशंसक हैं। आपने काव्य दर्शन मंगोल भाषा में अनुवाद किया है। इस शताब्दी में रूस की जनता भारत की जनता के साथ अटूट मैत्री के बंधन में बंध गई है, इनका ज्वलंत प्रमाण है। रूस में भारतीय साहित्य का प्रकाशन तथा उसका द्रुत गति से प्रचार। अभी हाल में रूसी कवि श्री लिपकिन ने 1,00,000 पद्यों वाली मूल महाभारत का रूसी भाषा में अनुवाद किया है। इसकी 30,000 प्रतियों को एक ही दिन में खरीद कर रूसी जनता ने भारतीय साहित्य के प्रति अपना अनुराग प्रदर्शित किया है। इसी प्रकार की एक योजना और है, जिसके अधीन रामायण का रूसी अनुवाद प्रकाशित किया जाएगा। विगत शताब्दी के मध्य भाग से जर्मन में जैन ग्रंथों के अध्ययन विवेचन का कार्य आरंभ हुआ था। 1848 में ओ वोहरलिकडंक ने हेमचंद्र के अभिधान चिंतामणि का एवं बेबेदे ने 1866 में शत्रुंजय महात्मय तथा भगवती सूत्र के कुछ अंशों का अनुवाद किया है। हुलर ने भारत के पुस्तकालयों में घूम घूम कर अनेक जैन पांडुलिपियों को प्राप्त किया तथा अनेक उनके आधार पर अल्बर्ट बेबर ने श्वेतांबर संप्रदाय के धर्म वैधानिक साहित्य का एक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया। हरमन याकोबी ने 1879 में कल्पसूत्र एवं हरिभद्र के सनत कुमार चरित का संपादन व अनुवाद किया। प्राच्य धर्म ग्रंथमाला में कुछ जैन सूत्रों के अनुवाद भी किए। उनके लेखों का एक संग्रह जैन धर्म का अध्ययन नाम से प्रकाशित हुआ है। हेलमुत फान ग्लासेनप ने भारतीय धर्मों के जैन धर्म के मोक्ष मार्ग का स्वरूप लिखा। बाल्ट सुबरिंग ने जैन तीर्थांकरों का उपदेश। आधुनिक विद्वानों ने क्लाउस ब्रून बर्लिन तथा लुडविन अल्सडोर्फ हम्बर्ग जैन अपभ्रंश साहित्य का अध्ययन कर रहे हैं। वर्तमान शताब्दी के चतुर्थ दशक में सन 1931 से 1940 श्री ब्रेसो एफ पहले ऐसे विद्वान थे जिन्होंने कौटिल्य अर्थशास्त्र में आर्थिक एवं न्यायिक विषयों का विवेचन का प्रयत्न किया। अपने अध्ययन द्वारा वह इस परिणाम पर पहुँचे कि अर्थशास्त्र अमूल्य सामग्री का भंडार है, जिससे विशेषकर भारत के मौर्य साम्राज्य के आर्थिक एवं न्यायिक ढांचों को समझा जा सकता है। आजकल बर्लिन स्थित जर्मन विज्ञान अकादमी के प्राच्य अनुसंधान संस्थान के प्रोफेसर डब्ल्यू रूबेन उच्च अनुसंधान संबंधी कई विषयों पर कार्य कर रहे हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र प्राचीन भारत के सामाजिक एवं आर्थिक इतिहास की शोध और काल विभाजन की दृष्टि से एक अत्यंत महत्वपूर्ण रचना है। जर्मन जनवादी गणतंत्र के युवा शोधार्थियों का एक छोटा दल आजकल प्रोफेसर रूबेन के निर्देशन में इसी संस्थान में अर्थशास्त्र का विशेष अध्ययन कर रहा है। इमर्सन ने अपने भारत प्रेम से यह दिखा दिया कि अमेरिका भी भारत को आदर देने में पीछे नहीं रहा। इमर्सन 1803 से 1882 ने भारतीय धर्म ग्रंथों की पूर्णता को समझा और ओवरसोल तथा सर्कल्स नामक उनके प्रसिद्ध निबंधों पर भारतीय विचारों को स्पष्ट प्रभाव है। इमर्सन पर भारतीय चिंतन का इतना प्रभाव था कि उन्हें लोग एक भौगोलिक भूल कहा करते थे। इमर्सन का यह कथन उल्लेखनीय है कि भारतीय क्लासिक इंद्रधनुष की भांति है, जिसकी प्रथम छाप भी कृतज्ञता पूर्वक ग्रहण की जानी चाहिए। इमर्सन के अनुयायी हेनरी डेविड थारो 1817 से 1862 ने भारतीय दर्शन का गहन अध्ययन किया था। उनके प्रिय ग्रंथ थे वेदांत साहित्य, मनुस्मृति और भगवद गीता। ए वीक ऑन द कॉन्फर्ड में उन्होंने गीता की विद्यतापूर्ण टीका की है। उनके द्वारा रचित अनटू दिस लास्ट का गांधी जी पर बहुत प्रभाव था। वाल्ट व्हिटमैन 1819 से 1892 भी भारत के दर्शन से प्रभावित थे। उनकी प्रसिद्ध कृति लीव्स ऑफ ग्रास में गीता का संदेश निहित है। पुराणों में वर्णित कुश द्वीप न्यूबिया, शाल्म द्वीप हिंद महासागर से मिला हुआ अफ्रीका का भूभाग जिसमें मेडागास्कर भी सम्मिलित है, चंद्र स्थान, शंख द्वीप आदि से अनुमान लगाया जा सकता है कि संस्कृत का कुछ संबंध अफ्रीका से भी रहा होगा, क्योंकि अफ्रीका से भारत का व्यापार विशाल स्तर पर होता था। संस्कृत का राजनीतिक महत्व। राजनीतिक दृष्टि से भी संस्कृत भाषा का विशेष महत्व है। आज राष्ट्र के सामने राष्ट्रीय एकता के लिए ही खतरा पैदा हो गया है। देश के विघटनकारी तत्वों की वृद्धि हो रही है। कुछ विद्वान यह कहते हुए सुने जाते हैं कि भारत को एक राष्ट्र में आबद्ध करने का श्रेय अंग्रेजों को है। ये विद्वान काल्पनिक लोक में रहते हुए समझ पड़ते हैं, क्योंकि यथार्थ तो यह है कि अंग्रेजी राष्ट्र को टुकड़े टुकड़े करने में लगी हुई है। आज भी अंग्रेजी की मोहिनी माया में फंसे हुए कुछ बंधु राष्ट्रीय सम्मान के मूल्य पर भी अंग्रेजी को भारत की राजभाषा बनाए रखने का प्रयत्न कर रहे हैं। वे संविधान को समुद्र तक में फेंक देने की बात करते हैं और राष्ट्रभाषा भाषी प्रदेशों से अपने को पृथक समझते हैं। यदि ये व्यक्ति अपनी मातृभाषा के लिए कुछ प्रयत्न करते तब तो श्रेयस्कर ही होता, किंतु आश्चर्य की बात है कि ये लोग अंग्रेजी जैसी विदेशी भाषा को ही राजभाषा बनाए रखने की वकालत करने में लज्जा का अनुभव नहीं करते। इससे यह प्रकट होता है कि उन्होंने भारतीय जनवर्ग से अपने को पृथक कर लिया है। ध्यान देने से देखने पर पता चलता है कि इन व्यक्तियों ने अपनी एक जाति बना ली है और शरीर तथा रंग से भारतीय होते हुए भी ये मन तथा विचारों से विदेशी हैं। इस स्थल पर मैकाले के उस प्रसिद्ध कथन को उद्धृत करना उपयुक्त समझ पड़ता है। अंग्रेजी शिक्षा को भारत पर थोपने की वकालत करते हुए उसने कहा था, हम लोग अंग्रेज को इस समय एक ऐसे वर्ग के निर्माण का भरसक प्रयत्न करना चाहिए जो हमारे और हमारे लाखों शासित जनों के बीच में दुभाषिये का काम करे, और जो वर्ग रक्त और रंग में भी भारतीय हो किंतु रुचि सम्मति नैतिकता और ज्ञान में अंग्रेज हो। आज यदि मैं काले होता तो वह हमारे अंग्रेजी मुँह से कितना प्रसन्न होता। राष्ट्रीय एकता की आधारशिला। भारत में राष्ट्रीय एकता संस्कृत के कारण है। समस्त भारतवर्ष में वाय भेदों के होते हुए भी संस्कृति एक है। संस्कृति की यह एकता संस्कृत भाषा के द्वारा विदित होती है। भारतवर्ष का जो भौगोलिक चित्र संस्कृत भाषा में वर्णित है वह राष्ट्रीय एकता का द्योतक है। वायु पुराण में भारत के विषय में लिखा गया है, उत्तरम यत्स समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम् वर्ष तद्भारतम नाम भारती यत्र संतति। आजकल हम राष्ट्रीय एकता की प्रायः चर्चा किया करते हैं। देश को विघटनकारी तत्वों से बचाने के लिए राष्ट्रीय एकता अत्यावश्यक है। इसीलिए भारत सरकार ने डॉक्टर संपूर्णानंद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था जिसने इस संबंध में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। यदि हमें राष्ट्र को बचाना है तो संस्कृत भाषा के पठन पाठन के प्रति लोगों में रुचि जागृत करनी होगी। भाषाओं की दृष्टि से भारत में अनेकता है किंतु संस्कृत का आदर भारत के प्रत्येक कोने में है। संस्कृत तो सभी की समान भाषा है। संपूर्ण भारत में इसके प्रति आदर का भाव है। हिंदुओं के सभी कार्य संस्कृत भाषा द्वारा ही संपन्न होते हैं। भारत का मामूली पढ़ा लिखा व्यक्ति भी भारत के सभी नगरों का प्रतिदिन स्नान के समय नाम लेता है और सभी नदियों का स्मरण करता है। स्नान करते समय धार्मिक व्यक्ति निम्नलिखित श्लोक का उच्चारण करते हैं, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तेता मोक्षदायिका। उपर्युक्त श्लोक में भारत के सभी नगर आ गए हैं। निम्नलिखित एक अन्य श्लोक का भी स्नान के समय पाठ किया जाता है जिसमें भारत की प्रमुख नदियों के नाम आ गए हैं, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधि कुरु। यही नहीं प्रत्युत देश के पर्वतों को भी ध्यान में रखा गया है। महेंद्रो मलया सहया सुक्तिमान यक्ष पर्वतः विंध्यश्च पार्याश्च कहकर भारतीय नागरिक भारत के सभी पर्वतों का एक दृश्य प्रस्तुत कर देता है। प्रायः स्मरण के समय भारतीय जन प्रायः निम्नलिखित श्लोक का पाठ करते हैं, महेंद्रो मलया सहयो देवात्मा हिमालय धेयरो रैवतको विंध्यो गिरिराश्चिका वालस्तिवथा। अर्थात महेंद्र उत्कल, मलय मैसूर, सह महाराष्ट्र, हिमालय उत्तर, रवतक गिरिनार, विंध्य मध्य, अरावली राजस्थान पर्वतों का ध्यान करें। प्रातः स्मरण के माध्यम से संपूर्ण देश का ध्यान करने की सुंदर योजना किसी अन्य भाषा के साहित्य के पास नहीं है। संस्कृत का विद्वान ही नहीं, साधारण भारतीयों में भी कुछ व्यक्ति प्रातःकाल निम्नलिखित श्लोक का मौखिक रूप से पाठ करते हैं, प्रयागम पाटलिपुत्रम विजयानगरम पुरीम इंद्रप्रस्थम गया चैव प्रत्युषे प्रत्यहम स्मरेत। अर्थात प्रयाग, पटना, विजयनगर, जगन्नाथपुरी, इंद्रप्रस्थ, गया जैसे क्षेत्रों का प्रतिदिन प्रातःकाल स्मरण करें। हे है किसी राष्ट्र के साहित्य के पास ऐसी विचार शक्ति और ऐसी प्रार्थना? संस्कृत साहित्य के संपर्क में रहकर भारतीय जन राष्ट्रीय एकता के सूत्र में स्वतः संबंध रहते हैं और रह सकते हैं। इसी भाषा और साहित्य के अनादर से राष्ट्रीय एकता खंडित हुई है। पंडितों के बीच संस्कृत आज भी संपूर्ण भारत में संपूर्ण भाषा का काम करती है। आज जो कुछ राष्ट्रीय एकता भारतवर्ष में दिखाई पड़ती है वह संस्कृत भाषा की ही प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप में देन है। अतः यह कहना कि संस्कृत प्राचीन काल की भाषा रही है और वह अब मृत भाषा है, अपने अज्ञान को सूचित करना है। आज भी संस्कृत हजारों व्यक्तियों की संपर्क भाषा है। कई हजार पंडित संस्कृत को मातृभाषा के समान अपने दैनिक जीवन का व्यवहार में लाते हैं। अतः इस भाषा को मृत भाषा कदापि नहीं कह सकते। वह तो आज भी लिखी पढ़ी बोली और सुनी जाती है। आज भी उसमें ग्रंथों की रचना होती है। अभी कुछ वर्ष पूर्व मद्रास निवासी श्री राम देशिकन शिरोमणि के ने कम रामायणम के बालकांड का संस्कृत संस्करण प्रकाशित किया। अनुवाद बहुत ही सुंदर बन पड़ा है। सन 1964 में प्रकाशित श्री महालिंग शास्त्री का भारत विषाद मौलिक काव्य ग्रंथ है। उसमें सुंदर बसंत तिलका छंदों में भारत की गौरव गरिमा गुंजरित हो उठी है। आज भी संस्कृत में पत्र पत्रिकाएं निकलती हैं। संस्कृत कार्यालय अयोध्या से प्रकाशित संस्कृतम, नागपुर भवित्यवम कार्यालय से प्रकाशित भवित्यवयम और दिल्ली से प्रकाशित संस्कृत रत्नाकर पत्रों का साप्ताहिक पत्रों के रूप में भारतीय कार्यालय गोपाल मंदिर मार्ग जयपुर से प्रकाशित भारती का मासिक रूप में तथा साहित्य अकादमी नई दिल्ली से प्रकाशित संस्कृत प्रतिभा का त्रैमासिक पत्र के रूप में उल्लेख किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त पंडरपुर से प्रकाशित संस्कृति, शिमला से प्रकाशित दिव्य ज्योति, वाराणसी से प्रकाशित गांडीव, पूना से प्रकाशित शारदा, बम्बई से प्रकाशित संविद तथा चित्तूर से प्रकाशित गीरवाणी बड़े ही उच्च कोटि के पत्र हैं। इस समय देश में लगभग 43 पत्र पत्रिकाएं संस्कृत में निकलती हैं, जिनमें एक दैनिक, दो साप्ताहिक, दो पाक्षिक, 11 मासिक, 9 त्रैमासिक तथा शेष अन्य हैं। आज भी वह अनेक छात्रों के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में गृहीत है। प्राचीन काल में ही नहीं, आज भी सर्वोत्कृष्ट विद्वता की एक परिचायक है। वर्तमान भारत में सभी लोग डॉक्टर सी डी देशमुख, डॉक्टर हरे कृष्ण मेहताब, श्री सुख ठाकर, श्री आर आर दिवाकर, श्री अनंत शयनम आयंकर, प्रोफेसर के ए सुब्रमण्यम अय्यर, श्री पतंजलि शास्त्री आदि व्यक्तियों के नामों से परिचित हैं। लेखक को इन सभी व्यक्तियों के संस्कृत में धारा प्रवाह भाषण सुनने के अवसर प्राप्त हुए हैं। इन विद्वानों के अतिरिक्त भारत के कर्णधार महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर कन्हैयालाल मुंशी, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, श्री लाल बहादुर शास्त्री आदि के संस्कृत प्रेम से हम सभी परिचित हैं। वस्तुतः संस्कृत सभी के लिए प्रेरणा का अच्छा स्रोत है। उपर्युक्त विवेचना से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय संस्कृति वस्तुतः संस्कृत साहित्य में सुरक्षित है। संस्कृत भाषा द्वारा हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकते हैं। संस्कृत भारत भूमि की एक अजस्त्र ज्ञानधारा है, जो क्षीण भले ही हो पर अभी अनिश्चय और निष्प्राण नहीं। एक ओर यदि इसके कणकण में भारतीय संस्कृति भरी है तो दूसरी ओर इसकी समृद्धि को विश्व की कोई भी नवीनतम भाषा नहीं पा सकती। कतिपय विगत शताब्दियों के राजनीतिक उलटफेरों और झंझावातों ने बरवश इसकी प्रमुखता अपहरण कर ली थी, किंतु भारत स्वातंत्र के पश्चात इसकी गौरव गरिमा पुनः प्रतिष्ठित हो रही है। इस स्थल पर यह कह देना अनुपयुक्त न होगा कि संस्कृत भाषा के महत्व की रक्षा केवल यह कह देने से नहीं होगी कि हम अतीत काल में बड़े वैभवशाली थे। अतीत को समझकर हमें वर्तमान की ओर ध्यान देना है। अतीत में जहां हम संसार के अन्य प्रगतिशील राष्ट्रों में किसी भी अर्थ में पीछे नहीं थे, वहां आज हम जीवन के सभी क्षेत्रों में अन्य राष्ट्रों से पीछे रह गए हैं। जिस तरह हम अपनी भोजन सामग्री के लिए विदेशों पर निर्भर रहते आए हैं, उसी तरह आज विचारों के लिए भी अमेरिका, इंग्लैंड और रूस का मुंह हमें ताकना पड़ता है। कितनी दयनीय स्थिति हो गई है हमारी। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम पुरातन और नवीन में समन्वय स्थापित करें। नवीन का हमें नशा नहीं होना चाहिए और ना ही हम केवल पुरातन के चक्रव्यूह में घूमते रहें। भारत को आज प्रत्येक क्षेत्र में ऐसे ही नेताओं की आवश्यकता है जो इस समन्वय के महत्व को पहचान कर जनता का तदनुरूप मार्गदर्शन करें।